तो चलिए आज बात करते हैं एक खास विचारधारा और आंदोलन की, युग निर्माण योजना। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं
जी,
और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, इसके पीछे सोच क्या है और इसका लक्ष्य क्या है।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विषय है।
हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक इसकी नींव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने शायद 60 के दशक में हिमालय से लौटने के बाद रखी थी।
जी, सन 1960-61 के आसपास।
अच्छा, तो ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक नए युग के निर्माण का एक तरह से आह्वान लगता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये मूल रूप से व्यक्ति और समाज दोनों के, आप कह सकते हैं, नव निर्माण की बात करती है।
और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य, वो तो काफी बड़ा लगता है।
हाँ, लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण।
मनुष्य में देवत्व
मतलब इंसान बेहतर बने और दुनिया जीने के लिए एक बेहतर जगह बने, ये इसका सार है।
और इस विशाल सोच के पीछे दस्तावेज बताते हैं कि दो मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा।
जी हाँ,
इन्हें प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का संगम भी कहा गया है। ये क्या है, प्रज्ञा और श्रद्धा?
हाँ, प्रज्ञा मतलब विवेक, ज्ञान, और सजल श्रद्धा मतलब गहरी संवेदना, करुणा। तो ये ज्ञान और संवेदना के संतुलन की ओर इशारा करता है।
अच्छा, मतलब हेड और हार्ट का कॉम्बिनेशन।
बिल्कुल बिल्कुल, और यही संतुलन उनके उद्देश्यों में भी साफ झलकता है। फोकस तीन स्तरों पर है।
तीन स्तर कौन कौन से?
व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण।
ओके,
यानी बदलाव की शुरुआत खुद से हो, व्यक्ति से, फिर वो परिवार तक फैले और फिर समाज तक।
एक तरह का रिपल इफेक्ट।
हाँ, कह सकते हैं।
और कल्पना एक, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज।
हाँ,
स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज। और इसका आधार है भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, आत्मवत सर्वभूतेषु।
आत्मवत सर्वभूतेषु यानी सब में स्वयं को देखना, और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम।
हाँ, ये तो सुना है, विश्व एक परिवार है।
जी, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझो, ये भाव इसके केंद्र में है।
दिलचस्प है कि इस काम को करने वाले संगठन के तीन नाम मिलते हैं, गायत्री परिवार, फिर प्रज्ञा परिवार और युग निर्माण परिवार। ये अलग अलग है या एक ही है?
देखिए, दस्तावेज तो यही बताते हैं कि ये एक ही संगठन के तीन पहलू हैं या तीन नाम हैं जो अलग अलग आधार पर रखे गए।
अच्छा, कैसे?
जैसे गायत्री परिवार शायद आध्यात्मिक आधार मतलब गायत्री उपासना पर जोर देता है, प्रज्ञा परिवार विवेकशीलता, ज्ञान, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस पर।
ओके,
और युग निर्माण परिवार सीधे तौर पर जो नव निर्माण का एक्शन वाला पार्ट है उससे जुड़ा है।
तो मतलब ये दिखाता है कि ये योजना जीवन के कई आयामों, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल, सबको साथ लेकर चलना चाहती है।
हाँ बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं इसे।
और बदलाव लाने के लिए तरीके क्या सुझाए गए हैं? यहाँ मैंने पढ़ा कि तीन क्रांतियों का जिक्र है, नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति। ये तो बहुत बड़ा लगता है सुनने में।
हाँ, ये तीन क्रांतियां दरअसल बदलाव के तीन स्तर हैं, नैतिक यानी चरित्र और मूल्यों में सुधार,
मॉरल अपलिफ्टमेंट।
हाँ, बौद्धिक यानी सोच और समझ का विकास, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, और सामाजिक यानी समाज की संरचना और व्यवहार में परिवर्तन,
सोशल चेंज।
जी, और दस्तावेज बताते हैं कि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है।
अच्छा, और इसे आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा?
इसके साथ ही लोक शिक्षण यानी आम लोगों को जागरूक करने पर बहुत जोर है,
मास एजुकेशन जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही। इसके लिए दो प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, गायत्री और यज्ञ।
गायत्री और यज्ञ, इनका क्या मतलब है यहाँ?
यहाँ गायत्री का मतलब है सामूहिक विवेक या सही समझ, कलेक्टिव विजडम, और यज्ञ का मतलब है मिलजुल कर अच्छे काम करना, सहकारिता युक्त सत्कर्म।
ओके, तो सिंबॉलिक है ये।
जी, ये प्रतीक हैं लोक शिक्षण के माध्यमों के।
कुछ बुनियादी मान्यताएं, कुछ कोर बिलीफ्स भी बताए गए हैं, जैसे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये तो व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी पर बहुत बल देता है।
सही कहा, ये विचार व्यक्ति को कर्ता मानता है, मतलब आप परिस्थितियों के दास नहीं है, आप क्रिएटर हैं।
राइट,
इसी से जुड़ी एक और मान्यता है, जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है।
अच्छा, थॉट्स बिकम थिंग्स वाली बात।
हाँ, कुछ वैसा ही, यानी हमारे विचार और कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है वो नर नारी के संबंध पर है।
हाँ,
उन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंद भी नहीं बल्कि पूरक माना गया है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो समाज के संतुलन के लिए जरूरी है।
ये एक अच्छी सोच है, अच्छा, व्यक्तिगत स्तर पर मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ सूत्र दिए गए हैं। मैंने पढ़ा उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तृत्व।
हाँ, ये सूत्र व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों को साधने के लिए हैं। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तृत्व, मतलब अच्छी सोच और अच्छा काम। थिंक नोबल, एक्ट नोबल।
और दूसरा था सादा जीवन, उच्च विचार।
जी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बाहरी सादगी और आंतरिक ऊंचाई की बात। इसी तरह जीवन को सही दिशा देने के लिए चार स्तंभ बताए गए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा।
साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार।
हाँ, साधना यानि आंतरिक अनुशासन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्वाध्याय यानि ज्ञानार्जन, सेल्फ स्टडी। संयम मतलब आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और सेवा मतलब दूसरों की भलाई, सेल्फलेस सर्विस।
तो ये चारों मिलकर व्यक्ति के संपूर्ण विकास का रास्ता दिखाते हैं।
बिल्कुल, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है पर्सनल ग्रोथ के लिए।
और इनका एक नारा भी है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये तो सीधे तौर पर व्यक्तिगत बदलाव को दुनिया बदलने से जोड़ता है।
हाँ, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है।
और एक और नारा, 21वीं सदी, उज्ज्वल भविष्य। ये काफी आशावादी लगता है।
जी, एक पॉजिटिव आउटलुक है फ्यूचर के लिए। और इनका प्रतीक चिन्ह है लाल मशाल।
हाँ, लाल मशाल, वो किस चीज का प्रतीक है?
वो समग्र क्रांति मतलब टोटल रेवोल्यूशन के लिए सामूहिक सशक्त प्रयास का प्रतीक है, एकजुट होकर बदलाव लाने की आग।
अच्छा, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। योजना में सात बड़े आंदोलनों का भी जिक्र है।
हाँ, सात मुख्य आंदोलन है,
साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण और व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन। अरे, ये तो लगभग जीवन के हर पहलू को छू लेता है।
बिल्कुल, ये सात आंदोलन दिखाते हैं कि योजना का दायरा कितना बड़ा और कितना प्रैक्टिकल है। यह सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है।
और इन्हें जमीन पर उतारने के लिए,
हाँ, उसके लिए तीन तरह के अभियानों की बात कही गई है, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक।
प्रचारात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक मतलब?
प्रचारात्मक मतलब विचारों को फैलाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव काम करना, अच्छे कामों को संगठित करना। और संघर्षात्मक मतलब जो गलत चीजें हैं, जो बाधाएं हैं, उनका सामना करना, उनसे संघर्ष करना।
ओके, तो प्रोपगेशन, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रगल।
जी, ये एक तरह से किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव को लाने की सोची समझी रणनीति लगती है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच।
तो कुल मिला के ये दस्तावेज एक ऐसी योजना का खाका खींचते हैं जो व्यक्ति के सुधार से शुरू होकर फिर परिवार, समाज और अंततः पूरे युग को बदलने का सपना देखती है। इसमें सिद्धांत भी हैं, कार्यक्रम भी हैं और एक स्पष्ट दिशा भी दिखती है।
हाँ, ये एक बहुत ही विस्तृत और महत्वाकांक्षी योजना है। अब ये सब समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए।
हाँ, पूछिए।
अच्छा सवाल है।
और अगर हाँ, तो फिर ये जो विचार है कि खुद को बदलने से वाकई दुनिया कैसे बदल सकती है, आज के संदर्भ में मतलब हमारे आज के लाइफस्टाइल और चैलेंजेस को देखते हुए, आत्म परिवर्तन से युग परिवर्तन का असली मतलब क्या हो सकता है, इस पर शायद सोचने की जरूरत है।